संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अनित्य और असरण भावना की चर्चा चल रही है और जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी संयोग हैं स्त्री पुत्रादिक के, मकान जायदाद के, रुपए पैसे के, शरीर के, ये निश्चित रूप से बदलने वाले हैं, अनित्य हैं। और असरण हैं का मतलब ये है कि इन्हें बदलते से रोकने की शक्ति दुनिया में किसी में नहीं है। जब ये बात कही जाती है तो सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि नए व्यवहार पंचपद शरणा, निश्चय आत्म शरणा है, तू चाह रहा पर की शरणा, उसका विनाश जब करना है। कि निश्चय नए से आत्मा का शरण है और व्यवहार नए से पंच परमेश्वरी का शरण है। और आप तो कहते हैं शरण है, हमने तो देखा कि शास्त्र में तो शरण बताया गया है। नवोकार मंत्र के बाद जो पंक्तियां हम बोलते हैं उसमें साफ लिखा है, अरहंते शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि, साहु शरणम पब्बज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम सम्मम पब्बज्जामि। ये लिखा बौद्ध धर्म में, लिखा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो शरण की बात तो लिखी है ना, आप कहते हैं कि सब अशरण है, कोई शरण है ही नहीं। तो यहां पर ये कहते हैं आचार्य के पंच परमेष्टी शरण है कि आत्मा शरण है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पर्याय और संयोग हैं उनमें जो बदलाव हो रहा है, तू भगवान की शरण में जाएगा, उनसे प्रार्थना करेगा तो वे बदलाव को रोक देंगे। और साफ शब्दों में कहेंगे कि जब तू मरने लगेगा, ये शरीर का वियोग होने लगेगा, जिसके लिए हम कहते हैं कि मरण जो है वो अशरण है, हमें मरण से कोई रोक नहीं सकता। तो आप ये बात कहते हो तो पंच परमेष्टी हमें ये शरण दे देंगे, तो आचार्य कहते हैं कि ये संभव नहीं है, वे हमको मरते से बचा लेंगे, ऐसी शरण दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। वे स्त्री पुत्रादि का वियोग होते हुए हमको बचा लेंगे, ऐसा शरण भगवान नहीं देते। अरहंते शरणम पब्बज्जामि का अर्थ ये नहीं है। जरा समझने में क्या कहना चाहता हूं, तो फिर वे पंच परमेष्टी कैसी शरण में जाएंगे, हम आत्मा की क्या शरण में जाएं, कौन सा शरण है जो तुम कह रहे हो? तो कहते अरहंत भगवान तुमको, तुम्हारा देह का वियोग होगा तो भी रोक देंगे, ऐसा शरण तुमने समझ रखा हो तो धोखे में हो। ये अरहंत भगवान की शरण में जाने का अर्थ ये नहीं है, है? क्या ऐसे ही ना आत्मा की शरण में जाने का अर्थ यह है कि हम आत्मा की शरण में जाएंगे तो बस देह का वियोग नहीं होगा, कि देह बीमार नहीं होगी। क्यों, क्या अर्थ है फिर? यही अर्थ है कि तुम्हारे को ये समझा दिए देंगे अरहंत परमेष्टी समोषण में विराजकर कि हर पर्याय नियम से परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता वस्तु का धर्म है, इसलिए वो कोई दुख का कारण नहीं हो सकती, इसलिए पर्यायों के पलटने में तुम आकुलित मत हो। क्या ये पलटती हैं तो इन्हें पलटने दो, देह का संयोग का वियोग होता है तो होने दो, पत्नी का वियोग होता है तो होने दो, तुम उसमें दुख मत मनाओ, इसका नाम अरंत भगवान की शरण है। कल उदाहरण दिया ना बुद्ध भगवान का, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जैनियों के भगवान नहीं बचा सकते होंगे, क्योंकि वे बचाते नहीं हैं, क्योंकि वे कर्ता धरता नहीं है। क्यों? लेकिन जो भगवान बचाते हैं और वे कर्ता धरता हैं, किसी को भी मार सकते हैं, बचा सकते हैं, क्यों रक्षा कर सकते हैं, ये जैनियों के भगवान नहीं बनाते होंगे, लेकिन अन्य धर्म में जो ईश्वर है माने गए हैं वे तो मारते बचाते हैं ना, कहते भाई साहब, ये जो भगवान महावीर कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि जो महावीर के भगत हैं वे मार और बचा नहीं सकते हैं और बाकी बचा सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे महावीर। तो क्या कह रहे हैं महावीर? कि बचा तो कोई नहीं सकता है ना, और कुछ भगवान के भगत ये कहते हैं कि हम जिन्हें भगवान मानते हैं वे बचाते हैं, और कुछ कहते हैं कि हम जिन्हें मानते हैं वे बचाते नहीं है। ख्याल में है ना? तो ऐसा नहीं है कि महावीर की ये बात हो क्या कि महावीर के धर्म के हिसाब से वो नहीं बचाए जा सकते हैं। तो हम कहें जो धर्म बचा सकता उस धर्म में हम जाएंगे, कि बचा तो कोई नहीं सकता। ये कहता है कि मैं बचा लूंगा और दूसरा कहता है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन बचा कोई नहीं सकता। क्या आप दूसरे के धर्म की खंडन कर रहे हो? क्या कर रहे हैं हम खंडन खंडन? क्यों? क्योंकि सीधी सच्ची बात है कि किसी का भी कोई भगवान या कोई भी शक्ति बचा सकती होती तो हमारे बाप दादे आज तक मौजूद होते, उनके बाप दादों के बाप दादे मौजूद होते। कहां गए चक्री वे जिन जीता भरत खंड सारा, क्यों कहां गए वे रामनु लक्ष्मण जिन रामन मारा। वे तो खुद भगवान के अवतार थे, राम अवतार थे कि नहीं थे? वे तो कृष्ण अवतार में अवतार थे कि नहीं थे? तो वे तो आज काज होते ना हमारे सामने, वो सबके सब क्यों चले गए? ये इससे बड़ा और प्रमाण हम क्या दें? कोई नहीं बचा सकता। हमारे भगवान बचा सकते, तुम्हारे नहीं बचा सकते। इन हमारे तुम्हारे के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? सीधी सच्ची बात है कि हमें तो प्रमाण चाहिए हैं? कि हो बताइए, 1000 वर्ष पुराने 2000 वर्ष पुराने कोई आदमी ऐसे हो कि जो जिन्हें कोई मार नहीं सका होता, जो मरे ना हो। इससे सिद्ध है कि दुनिया की कोई शक्ति इस संयोग के वियोग को रोक सकती नहीं है, और इस समझ का नाम ही असरण है। यही सुखी होने का उपाय है। तो कहते जो संयोग हैं उनका तो वियोग होगा गारंटी से। तो फिर वो ये कहता है दूसरी दफे कि ठीक है ठीक है, हमको वियोग तो होगा, लेकिन इनके वियोग के बदले में कुछ मिलेगा भी कि नहीं? हम जिस मकान में अभी रह रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, गवर्नमेंट का है, क्यों यदि हमें निकाल दिया जाएगा उस मकान में से तो कोई दूसरा मकान हमें अलॉट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्यों मिनिस्टरों से मकान खाली कराते हैं, प्रधानमंत्री से, तो फिर दूसरा कोई देंगे कि नहीं देंगे? क्यों एक संयोग जाएगा तो उसके बदले में दूसरा संयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यदि हम ये कहें कि नहीं मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगा, तो कहें नहीं 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 चिंता मत करो मिलेगा। तो मिलते ही कहते कैसा, इससे अच्छा कि बुरा? क्यों इससे अच्छा कि बुरा? विकल्प में खड़ा है कि नहीं खड़ा है? कभी हमसे क्या पूछता है? जैसा पुण्य पाप तूने बांधा होगा है, जैसी तेरी पर्यायगत योग्यता में जैसा होगा वैसा होगा, इसमें कोई क्या करे है? इसमें दुनिया की कोई कौन सी ताकत क्या कर सकती है? तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा चलो जैसा भी मिलेगा मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं कि सड़क पे सामान रख के रह जाएंगे। एक 4 कमरों का मकान है तो 3 का मिलेगा क्यों भाई साहब? कि इसे और 10 कमरों वाला मिलेगा? कैसा मिलेगा? कि कोई बात नहीं मिलेगा तो ये पंचेंद्री वाला शरीर नहीं मिलेगा, 5 कमरों वाला मकान नहीं मिलेगा, तो 4 इंद्री वाला मक्खी मच्छर तो हो जाएंगे क्या? 3 इंद्री वाला मिलेगा कीड़े मकोड़े तो हो जाएंगे, 2 इंद्री मिलेगा तो लट पपील का तो हो जाएंगे क्यों, 1 इंद्री मिलेगा तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि कोई ना कोई संयोग तो मिलेगा ना बदले में। ये कहते कोई नहीं मिलेगा तो इसे घबराहट होता है। अरे मूर्ख, कोई नहीं मिलेगा तो सीधा मोक्ष हो जाएगा क्यों? और कोई ना कोई संयोग मिलेगा, अच्छा बुरा कैसा ही, तो उसमें हम काट लेंगे समय शांति से, है ना? तो ये संसार है, इस संसार में एक चीज जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी जाएगी, चिंता क्यों करते हो? ये तो संसरण स्वभाव है, ये कोई बात नहीं, छोटा बड़ा मिलेगा तो ठीक है, चलेगा काम, क्यों चला लेंगे काम, हम उसमें ही सुखी हो रह लेंगे, शांति से दो कमरे वाले मकान में भी, सारी जिंदगी में 25-25 कमरे के बंगलों में रहे, अब दो कमरे के मकान में ही रह रहेंगे, जब तुम 25-25 में रहे तब भी एक ही कमरे में रहते कि नहीं रहते, 24 कमरे तो बंद ही पड़े रहते थे, झाड़ू लगाने के अलावा और क्या होता था तुम्हारा, क्या करते थे तुम है? हम तैयार हैं कि भाई इतने संसार का स्वरूप ही ये है कि सब जग देखो छान, सारी दुनिया मैंने छान छान के देख ली, और कबहू ना सुख संसार में, सब जग देखो छान, कि भाई तू कहता अच्छे संयोग बुरे संयोग ऐसे संयोग वैसे संयोग, किसी भी संयोगों में रंच मात्र भी सुख और शांति नहीं है। ये तीन भावनाओं की बात चल रही है, कौन कौन सी? अनित्य भावना, असरण भावना और संसार भावना। संसार माने ये संयोग, इन संयोगों में अपनापन, इनमें एकत्वमत्व बुद्धि, उसी का नाम तो संसार है। क्यों हमेशा समझते हैं कि हम संसार में हैं, तुम संसार में नहीं हो। मैं हूं नहीं संसार में, संसार मेरे भाव में, और संसार शीघ्र विनाश हो आ जाए यदि मैं स्वभाव में। इस संसार, संसार तो जीव की पर्याय का नाम है, तो हम तो जीव की पर्याय द्रव्य में होती है कि पर्याय में द्रव्य होता है? जब द्रव्य में पर्याय होती है तो हम कहां है संसार में? संसार हम में है। क्यों? ये दुनिया का नाम संसार नहीं है, ये तो लोक है, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद पुराना बांध बंगला गाड़ी, ये संसार नहीं है। इनमें जो अपनापन है, इनसे जो राग द्वेष मोह का भाव है, वो वास्तव में सच्चा अपना वो संसार तो वो है, वो जो तेरे परिणाम में मौजूद है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चक्रवर्ती के विभूति के बीच में रहते हुए भी, क्यों चक्र की विभूति में रहते हुए भी उसमें एकत्वमत्व तो नहीं है उनका, और एक अज्ञानी का इस छोटे भोटे साधारण से संयोगों में भी रह करके उनमें एकत्वमत्व तो होने से वो अनंत दुखी है। ऐसा नहीं है कि बाहर का जो परिग्रह है, संयोग है, उसका नाम कोई परिग्रह है, उसका नाम संसार है। संसार तो जो तेरे भाव में उसके एकत्व महत्व जो पड़ा हुआ है, वो वास्तव में संसार है। इसलिए यहां पर ये कहते हैं कि हमारे चिंतन का तरीका ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि जो जो संयोग हैं, जो पर्याय हैं, वे अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, और मैं नित्य हूं, त्रिकाली हूं, क्षणभंगुर नहीं हूं। अकेला पर्यायों की क्षणभंगुरता का विचार किया तो वो अनित्य भावना नहीं है। क्यों? ये पर्यायों की अनित्यता क्यों बताई जाती है चिंतन में, आप जानते हैं हुकुमचंद जी? इसलिए बताई जाती है कि हमारी दृष्टि इस पे से हटे। इन संयोगों की क्षणभंगुरता क्यों बताई जाती है? क्योंकि हमारी जो दृष्टि इस पे रम रही है ना, वो वहां से हटके स्वभाव की तरफ आए। ये संसारमय है, ये दुखमय है, ये दुखमय है, ऐसा उसको विकार क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो हमारे में से हटे, उस पे से हमारी दृष्टि हटे। तो पर्यायों पे से, संयोगों पे से, संसार पे से हमारी दृष्टि हटे, इसलिए उन्हें अनित्य, असरण और असार बताया जा रहा है। तीन बातें हो गई, कौन कौन सी? अनित्य भावना में संयोग और पर्यायों की अनित्यता बताई जाती है, असरण भावना में असरणता बताई जाती है, और संसार भावना में असारता बताई जाती है। क्या समझे? तीन बातें हो गई। इस संसार में जितने भी संयोग हैं, इन संयोगों संयोगों की बात क्यों करते हैं? स्त्री की, मूत्र की, मकान की, जायदाद की, शरीर की, ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें ही ये इसका अपनापन है, इनसे ही राग है ना। तो इन्हें जितना इसने मजबूती से अपने को अपना अंदर अंदर में अपनापन मान रखा है, तो जितना इसने रटाई करी है अपनेपन की, अब उतनी रटाई यहां अंदर से कराते हैं कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो नित्य हूं और ये अनित्य है, समझे ना। ये तो असरण है और मैं तो परम शरण भूत हूं, मैं तो असार, ये तो असार है, मैं तो परम सार भूत हूं। ख्याल में है ना, ये तीनों बातों में तीन उनके अपोजिट बात लाना। जब हम पर्यायों को, संयोगों को अनित्य कहें, तो उसके सामने अपने आत्मा को खड़ा करना कि वो नित्य है, क्योंकि हमें भेद विज्ञान करना है ना, अलग जाति खड़ी करनी है ना, अपने की पार्टी अलग खड़ी करनी है और दूसरी पार्टी अलग खड़ी करनी है। तो इन संयोगों को कहा क्षणभंगुर अनित्य, तो आत्मा को कहा नित्य। जब उन्हें कहा क्या असरण, तो आत्मा को कहा परम शरण भूत। क्या यदि उनको असार कहा तो अपने आत्मा को परम सार भूत तत्व कहा। तो ये तीन भावनाएं यहां पर संयोगों में अनित्य, असरण और संसार, ऐसे नाम दिए। वहां पर बदले में तीन अलग नाम दिए, अनित्य की जगह क्या नाम दिया, नित्य। तो अनित्य भावना में अकेली अनित्यता का विचार नहीं करना है, क्या करना है, पर्यायों की अनित्यता, क्षणभंगुरता और आत्मा की नित्यता, ये दो बातों के विचार चिंतमन का नाम है अनित्य भावना। कौन कौन सी दो बातें, कि ये संयोग अनित्य है, स्त्री पुत्रादि का संयोग अनित्य है, शरीर का संयोग अनित्य है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नित्य है, एक बात हो गई। ये पर्याय असरण है और भगवान आत्मा शरणभूत है, ये पर्याय और संयोग असार है और भगवान आत्मा परम सारभूत है। क्या अब दो पार्टी खड़ी कर दी, अब तू बोल तुझे क्या चाहिए दो में से। अब तो बराबर दो पार्टियां अलग अलग जगह खड़ी हैं, तूने अच्छी तरह से देख ली है, बोल क्या है? ये समय सार की 72, 73, 74 में गाथा में यही तो लिखा है, क्या आत्मा असरण है और क्या रागादिक असरण है और आत्मा परम शरण भूत है, रागादिक अनित्य है और आत्मा नित्य है, रागादिक दुख रूप है और आत्मा सुख स्वरूप है, रागादिक दुख के कारण है और आत्मा सुख का कारण है, ऐसा क्या नहीं है, अधो अनत्य ऐसा शब्द आता ना। ऐसे तीन भावनाओं में यहां तक आ गए अपन कि संयोग जिसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और शरीर इतनी चीजें हैं, इनमें जो परिवर्तन है उसका नाम है अनित्यता। ख्याल में है ना, और इसके विरुद्ध जो अपना भगवान आत्मा है वो है परम नित्य। सुने ना, ऐसे ही ये असरण है ये आत्मा और वो शरण है, शरण है माने आत्मा परम शरण भूत है और वो पर्याय असरण है, वो पर्याय असार है संयोग, और आत्मा जो है वो सारभूत है। जब वो ये कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब, जो भी जैसा भी मैं हूं सुख दुख, वो हम मिल बांट के भोग लेंगे। क्या क्या कहते हैं, कि हम मिल बांट कर भोग लेंगे, क्या को ये संसार के जो भी सुख दुख हैं हमें जैसे भी मिलेंगे मिल बांट के भोग लेंगे, अच्छे बुरे दिन हम जैसे भी हैं काट लेंगे, ऐसा बोलते हैं, नहीं मिलते ना सब लोग, ऐसी बहुत प्रवृत्ति है। तब वो कहते हैं कि आज तक ऐसा ना हुआ है और ना कभी होगा, सुर स्वर और नरक में, नरक में हर जगह आत्मा अकेला ही जाता है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, यूं कबहू या जीव को साथी सगा न कोई, कि कोई भी दुख बांटा नहीं जा सकता है और सुख भी नहीं बांटा जा सकता है। भगवान महावीर के बहुत रिश्तेदार संसार में घूम रहे होंगे अभी, थोड़ा महावीर अपना सुख बांट देते, थोड़ा क्यों थोड़ा थोड़ा सुख उन्हें दे देते और थोड़ा थोड़ा दुख उनका ले लेते। अपने भी बहुत से रिश्तेदार मोक्ष में चले गए होंगे, क्यों भी हमारा थोड़ा दुख बांट लेते हैं, थोड़ा सुख हमें दे देते। अरे भाई वह संभव ही नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। अभी हम क्या बोलें, आप समझ लीजिए ना कि एक भाई रावण नरक गया और इंद्रजीत और कुंभकर्ण मोक्ष गए, राक्षसों में ऐसा हुआ कि हाँ, और यहां नहीं हुआ क्या, राम मोक्ष गए और वो तो एक ही बात है, रघुवंश में हो क्यों चाहे राक्षस वंश में हो, सब जगह ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ, बोलो किसी ने मिल बांट के भोग पाया है? क्या सुख दुख में कोई साथी हो पाया? आज तक तो हुआ नहीं है। इस बात का चिंतमन अनित्य कौन सी भावना, एकत्व भावना में किया जाता है। अभी बहुत से आदमी जब एकत्व भावना का चिंतमन करते हैं ना तो रोनी रोना शुरू होता है, हाय राम हम क्या करें, हम तो कोई शरण नहीं है, कोई बचा नहीं सकता है, संसार में तो दुख ही दुख है, और क्या करें सब क्षणभंगुर है, रोते रोते और हम सब अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देते हैं, हमने बाल बच्चे आकर काय के लिए पाल पोस के बड़े किए थे, 9 महीना पेट में रखा था, 18 महीना गोद में रखा था, क्यों और बुढ़ापे में हमें अकेले छोड़ दिया। अरे बुढ़ापे में नहीं, तुम जवानी में भी अकेले ही थे, बचपन में भी अकेले ही थे, हैं जन्म में भी अकेले और मरण में भी अकेले, क्यों इसको बहुत दुख होता है। काय बात का, कैसे तो दारा हुए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, ये सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई साथ नहीं देता, स्त्री पुत्र मकान जायदाद कोई साथ नहीं देता। मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ दे में कौन, काय में साथ नहीं देते हैं कि जन्म में और मरण में, तो आप चाहते हो कि कोई बेटा तुम्हारा जन्म में साथ देवे, जन्म में साथ देने का मतलब है जुड़वा भाई होना, क्यों, और मरण में साथ देने का मतलब है हमारे साथ ही मर जाए, तो आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा आपका साथ देवे मरण में, माने आपके मरते ही साथ में मर जाए, बोलो क्या चाहते हो, स्त्री पुत्र भाई ये जन्म में साथ दें, यदि स्त्री तुम्हारे जन्म में साथ देती तो वो तुम्हारी सगी बहन होती, जुड़वा तुम्हारी पत्नी कैसे होती, बोलो क्यों, और बेटा यदि साथ देता जन्म में तो तुम बाप बेटे कैसे होते, जुड़वा भाई होते कि नहीं होते, और कोई चाहता है आज तक कि मेरे साथ में मेरे बेटे और नाती पोते सब मर जाएं, कैसी बात करता है जो साथ नहीं देते, साथ नहीं देते, यदि ये साथ नहीं देते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है, ये तो अच्छी बात है, क्यों इस काम में हम साथ चाहते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं, हमें साथ नहीं देते, साथ नहीं देते, साथ नहीं देते। अरे भाई साहब कोई साथ दे ही नहीं सकता है, ये तो अकेला ही आएगा अकेला ही जाएगा, ख्याल में है ना, ये कभी किसी का साथ होता ही नहीं है, धर्म में भी नहीं होता है, कर्म में भी नहीं होता, नर्क में भी नहीं होता, निगोद में भी नहीं होता है, कहीं साथ नहीं होता है, स्वर्ग में नहीं होता है, मोक्ष में नहीं होता है, सब अकेला अकेला अकेला। ये एकत्व भावना में गहराई से चिंतन किया जाता है, सच्ची बारे भावनाएं सही ढंग से चिंतन करें और उनकी चिंतन धारा सही हो तो सुख और शांति की प्राप्ति हुए बिना कभी रहेगी नहीं। सभी लोग इस चिंतन धारा को एक दफे समझ लें और रोजाना इसका ध्यान करें तो उनके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य हो। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देखे।